مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اصفر امام اور انجینئر راب میکلین۔ اور سامعین، ہمارے آج کے راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے 2016 کے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی باضابطہ نامزدگی۔ سامعین، ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں پارٹی کے قومی کنونشن کے دوسرے روز 1725 ڈیلیگیٹس نے ٹرمپ کے حق میں ووٹ ڈالے، اور یوں وہ 8 نومبر کو ریپبلکن پارٹی کی ڈیموکریٹک جو جماعت ہے اس کے امیدوار کے طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ کامیاب ہونے والا امیدوار جو ہے وہ آئندہ سال جنوری میں صدر اوباما کی جگہ لیں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ملک ندیم عابد صاحب نے۔ آپ ڈیموکریٹک ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ہم جوائن کریں گے ہمیں ساجد تھارر صاحب، جو مسلمز فار ٹرمپ نامی تنظیم کے سربراہ ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں ایک اسلامی ادارے کیئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شکیل سید صاحب، اور ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ایم جے خان صاحب، جن کا ریپبلکن پارٹی سے تعلق ہے۔ آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789۔ اوکے، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے طلعت رشید صاحب نے، اور ملک ندیم صاحب، آپ کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، دونوں ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور طلعت رشید صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ کی باقاعدہ نامزدگی اب سامنے آ چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ آنے والے الیکشن میں کتنے مضبوط کینڈیڈیٹ ثابت ہوں گے؟
جی، اب دیکھیں نا، اب سب باتوں سے پتہ چل رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں، جو پولنگ سے بھی پتہ چل یہی رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے، کیونکہ ان کی جو بھی باتیں ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور وہ ریزونیٹ کرتی ہیں جو ایوریج امریکن ہے۔ حالانکہ انہوں نے، ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ان کو نہیں آنے دینا چاہیے، لیکن میں خود ٹرمپ سے ملا تھا پچھلے ہفتے جب شکاگو میں ٹرمپ آئے تھے، ان کے بیٹے بھی آئے تھے، تو میں نے کھل کے ان سے بات کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں، میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو لوگ یہاں پہ آ کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے ہم امریکہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ٹرمپ ہے وہ کافی پاپولرٹی حاصل کر رہے ہیں، اور جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں دس از امپریکٹیکل، کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکے۔ اگر یہ بات ہوتا تو اوباما اپنی ساری چیزیں منوان لیتے۔
ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب کتنے، جس طرح میرا آپ سے کوسچن تھا کہ کتنے اہم یا کامیاب کینڈیڈیٹ، مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر یہ ثابت ہو سکتے ہیں پارٹی کے لیے؟
دیکھیں نا، پال رائن، انہوں نے ان کو انڈورس کر لیا، حالانکہ کچھ 10 یا 12 ریپبلکن جو سینیٹرز یا گورنرز انہوں نے ان کو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی اب پوری فلی ان کے ساتھ ہے، میجورٹی ان کے ساتھ ہے۔
لیکن ریپبلکن پارٹی اور
ان کے ساتھ ہے، کیونکہ اب وہ ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو پارٹی اب ان کو پش کرے گی تاکہ وہ ہیلری کلنٹن کے خلاف اچھی طرح سے جیتے وہ۔ حالانکہ اگر آپ کو دیکھیں تو ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ہی ویک کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن جس بات جو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ مضبوطی سے آگے بڑھیں گے۔
ठीक, हमने देखा कि कुछ जो रिपब्लिकन पार्टी के अहम रहनुमा हैं उन्होंने इस कन्वेंशन में शिरकत करने पर घर बैठे रहने को तरजीह दी है, और इसमें दोनों जो सीनियर बुश हैं और जूनियर बुश वो भी शामिल हैं। मिट रोमनी एक बहुत बड़ा नाम है रिपब्लिकन पार्टी का, इसके अलावा जॉन मिकेन, जॉन बैनर जो हैं वो नहीं है इस कन्वेंशन में, इस वक्त मौजूद नहीं है। इसकी आप क्या वजह देखते हैं और इससे कितना आपके ख्याल में फर्क पड़ेगा, खास तौर पर इस कन्वेंशन की ऑथेंटिसिटी की जब हम बात करते हैं?
नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़ाहिर है कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखे ना, शिकागो के इलिनॉय सेनेटर मार्क कर्क हैं, उनका एडवाइजर हूँ, उन्होंने भी शिरकत से इनकार कर दिया। वो इसी वजह से उन्होंने किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं मुसलमानों के खिलाफ हैं, मैक्सिकन्स के खिलाफ हैं, और जो अफ्रीकन अमेरिकन उनके खिलाफ है, उसकी वजह से। लेकिन उसकी ये 100% वजह नहीं, क्योंकि जो सेनेटर्स वगैरह री इलेक्शन के लिए आ रहे हैं उनके लिए मसला हो रहा है कि वो जो ट्रंप को फॉलो नहीं करते वो उस वजह से कह देंगे ताकि उनकी सीट ना चली जाए। लेकिन आपने ठीक कहा, रामनी हो गए, वो मिकेन हो गए, वो उनको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन ये रेटरिक है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें उनकी स्पीच वगैरह में जो है वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बल्कि मैं उनके जो एरिक है, एरिक ट्रंप, उनसे उनके साथ में लंच में बैठा हुआ जब इनका फंड रिजल्ट था, तो मैंने उनसे कहा था कि यू नो हम मुस्लिम उनके साथ होंगे एज लॉन्ग एज के ही चेंजेस हिज टोन। तो वो ये कह रहे हैं कि अब मुसलमानों के खिलाफ आप देखेंगे फेवरेबल स्टेटमेंट आएंगे।
ठीक है, तो जो डिविजन थी शुरू में क्या वो पार्टी के अंदर वो खत्म हो गई है आपके ख्याल में अब इस स्टेज पे?
नहीं, थोड़ी सी रिफ्ट रहेगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% चली गई है, लेकिन थोड़ी सी रिफ्ट होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि उससे ट्रंप को कोई नुकसान होगा, क्योंकि जो जनरल पब्लिक है वो सारी जो है लग रहा है कि वो ट्रंप की फेवर में है। और जो देखिए ना, जो भी इलेक्शन होता है उसमें 100% आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, उसमें इक्का दुक्का लोग होते हैं, जो स्मॉल परसेंटेज है वो आपके आइडिया से जो है मुतफिक नहीं होती। लेकिन जब पार्टी लाइन का चक्कर आता है तो आई एम प्रीटी श्योर के डाउन द रोड ये लोग जो है ये ट्रंप की फेवर में होंगे।
ठीक है, हमारे साथ रहिए आप तलत रशीद साहब। मलिक नदीम साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद, और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप की बाजाबता नामजदगी के हवाले से डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसका क्या रद्दअमल सामने आ रहा है? जैसे ही पॉल राइन ने कल रात को डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी का ऐलान किया तो हमने देखा कि कुछ ही देर बाद हिलरी क्लिंटन जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जो आम अमरीकी लोग हैं उनसे ये कहा कि आप इस बात को हमारे साथ मिलकर यकीनी बनाएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनके बकौल ओवल ऑफिस में कदम ना रख पाएं। लेकिन और भी पार्टी का बाकी जो रहनुमा हैं या पूरी पार्टी का रद्दअमल क्या सामने आ रहा है इस वक्त?
देखिए, पहली बात तो ये कि मैं पार्टली इधर आपकी इजाजत से तलत रशीद साहब की बात से एग्री करूंगा कि जो डिवाइड है रिपब्लिकन पार्टी में, उन्होंने कहा कि ये पार्शल है, मैं समझता हूं कि ये पार्शल नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग डिवाइड है कि जो थोरोब्रेड ब्लू आइड जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस चीज पे और इस वाक्य पे बहुत सख्त न सिर्फ शर्मिंदा हैं बल्कि डिप्रेस हैं। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि उन्होंने घर बैठने को प्रेफर किया है बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं समझता हूं कि ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अब्राहम लिंकन की पार्टी के साथ ये जो कुछ हो रहा है और जिस तरह के लोग अब इसके प्लेटफॉर्म पे आके जो रिप्रेजेंट करने की बातें कर रहे हैं और मुल्क को रिप्रेजेंट करने की बातें कर रहे हैं वो उस पार्टी के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पार्टी का क्या रिएक्शन है, पार्टी का रिएक्शन भी वही है जो जनरल पब्लिक का रिएक्शन है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों की विल एंड विश को रिप्रेजेंट करते हैं, और लोग इस वक्त हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और गम गुस्से की हालत में भी हैं कि ये पॉलिटिकल जो एरिना जिसमें बहुत सीरियस लोग इस लेवल पे आया करते थे, बुश फैमिली को देख लीजिए, आपने मिट रोमनी का जिक्र किया, जॉन मिकेन साहब का जिक्र किया, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब ये लोगों के सामने, इन लोगों की मौजूदगी में क्या हो गया इस पार्टी को कि उनको डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं मिला? और दूसरी बात जो मैं अर्ज करूंगा, जो हमें ज्यादा परेशानी का बायस है वो उनकी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उनकी हमारी परेशानी का ज्यादा सबब यह है कि वो अनस्टेबल हैं। अब तलत रशीद साहब ने भी बजा फरमाया कि उन्होंने गुज़श्ता चंद रोज से मुसलमानों के हक में थोड़ा सा कंपैरेटिवली सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से हमें खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो अनस्टेबल है। एक दिन वो एक बात करते हैं, दूसरे दिन वो उसके कंप्लीटली 180 डिग्रीज पे डिफरेंट बात करते हैं। ये किसी भी मुल्क के लीडर के लिए ये बड़ी खतरनाक बात होती है, और चीज आए कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और वाहिद सुपर पावर के प्रेसिडेंट के लिए अगर इतनी अनस्टेबल साइकोलॉजिकल और मेंटल कंडीशन है तो ये बड़ी खतरनाक बात है, ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरे का बायस है।
ओके, आप मुझे बताइएगा तलत रशीद साहब के डोनाल्ड ट्रंप जो है ऐसी क्या वजूहात थी कि वो जिसकी वजह से वो इस स्टेज तक पहुंचे हैं, और ये कि इतनी यानी इवन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा डिवीज़न मुखालफत के बावजूद उन्हें रात को नामज़द कर दिया गया है रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से, वजूहात जो हैं वो क्या थी, क्या वाकई इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था किसी और उम्मीदवार का, किस तरह आप देखते हैं इसको?
ये अनफॉर्चुनेट समझ लें क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा इनसे बेहतर कैंडिडेट नहीं मिला, लेकिन जो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें ना तो यहाँ के लोग जो हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से तंग आ चुके थे, वो एवरेज पर्सन जो है उसके लिए कोई भी, जैसे हिलरी क्लिंटन भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं कि जो जनरल पब्लिक को रेजोनेट कर सके। जो क्लिंटन जो आपने ट्रंप ने जो 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 बातें की हैं वो हर आदमी ने उसको अप्रिशिएट किया है, और एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ऐसी बातें हों, लेकिन इसके बावजूद देखें जब बुश आए, केसिक आए, रूबियो आए, सब आए, हालांकि ये अच्छे कैंडिडेट्स थे, लेकिन इसके बावजूद वो आगे नहीं आ सके, और यही जो है ये आगे लाइमलाइट में आए। तो इसकी वजह ये है कि उनके पास करिश्मा था जो लोगों को, जो वो लोगों की बात कहते थे जो लोग सुनना चाहते थे, उनके एवरेज अमेरिकन जो है उन्होंने कहा जी देखें हमने सबको आजमाया है लेकिन कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं जो हमारे 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 साथ रेजोनेट करता है। और जो दूसरी बात इन्होंने कही एज अ बिजनेसमैन कि वो बिजनेसेस को जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है उनको अमेरिका में वापस लाना चाहते हैं, और ये बिजनेस कम्युनिटी इसलिए उनके साथ है, और ये बहुत जरूरी है। अमेरिका जो है आप देखें तो वो सर्विस इंडस्ट्री बनता जा रहा है, जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी आप अमेरिका को खुशहाल नहीं कर सकते। वो उनकी दूसरी बात ये भी है कि हम मिडल ईस्ट वगैरह में इतना पैसा लगा रहे हैं, वही पैसा हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, और वो ISIS ISIS वगैरह के जो के खिलाफ है, और आई थिंक वी एग्री विद इट कि हम ये नहीं चाहते कि उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे और मुस्लिम कम्युनिटी पे फर्क पड़े और हमारी यंग जनरेशन के पे भी फर्क पड़े, इसलिए वो वीक पॉइंट जो भी समझ लें आप उसके बावजूद वो आगे हैं।
ठीक, मुसलमानों की शुरू में आपने बात की, और यहाँ पे हम देख रहे हैं यही क्वेश्चन तलत रशीद साहब अगेन मैं आपसे करना चाहूँगी, यहाँ आमतौर पर जो सुनने में आता है मुस्लिम कम्युनिटी में आप जो जाते हैं वो इस खास तौर पर इस एक स्टेटमेंट से बहुत नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि वो मुसलमानों को अमरीका आने नहीं देंगे अगर वो सदर बनते हैं, दूसरा मुसलमानों को उनसे ये भी गिला है कि जो मुसलमान दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहे हैं जो उनका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते बनिस्बत उन लोगों के अमरीकियों के या फ्रांसीसियों के या दीगर के ममालिक के लोगों के जो दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसे मैंने पहले जिक्र किया था मैं डोनाल्ड ट्रंप से खुद मिला था, खाली 20 के 22 लोग आए थे, उसके अंदर कोई मीडिया कुछ भी नहीं था, और हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था, मैंने उससे खुल के बात की, मैंने कहा आई एम पाकिस्तानी, आई एम मुस्लिम and I will support you as long as you change your tone. तो उसने बिल्कुल ओपनली कहा, उसने ये कहा कि देखिए मुसलमान आपके मुसलमानों को मार रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग यहाँ अमेरिका में भी आए, मैं उनके खिलाफ हूँ जो लोग इस किस्म की दहशतगर्दी करते हैं, मैं एवरेज अमेरिकन मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे मुसलमान बहुत से दोस्त हैं, मेरे मुसलमान पाकिस्तानी बहुत से दोस्त हैं, और मुझे पता है उन्होंने मुझे कहा है कि ठीक है जो आप कह रहे हैं एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अगेंस्ट ऑल द मुस्लिम, प्लस ये मना कर भी नहीं सकते, दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये जो है ये ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें ये चीजें नहीं हो सकती, लेकिन इमोशनली जो बात कहते हैं, चूंकि इसको मैं सीरियसली इसलिए नहीं लेता कि ये ऐसा काम है जो एक प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, मतलब इट्स इम्पॉसिबल. तो ये इसको अगर ठीक है, कई मुसलमानों ने इसको बहुत सीरियसली लिया है, लेकिन ये हो नहीं सकेगा.
ठीक है मलिक नदीम साहब, कल हमने देखा कि जो इवेंट था रात को, उसका जो उसकी जो क्लोजिंग है वो साजिद तारर साहब जो हैं उनसे करवाई गई. बाकायदा एक मुसलमानों का जो अंदाज होता है उस अंदाज में उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी अहादीस जो है उनका हवाला दिया और उनसे वो क्लोजिंग इवेंट की उनसे करवाई गई. ये बताइएगा कि इससे क्या जो तहफ़ुज़ात हैं मुसलमानों के, ख़ास तौर पर यहाँ अमेरिका में मौजूद जो मुसलमान हैं, उनके तहफ़ुज़ात में कोई कमी आएगी?
देखें, पहली बात तो मैं एज ए पार्टी के साथ मेरे जितने मर्जी सियासी इख्तलाफात सही, एज ए डेमोक्रेट मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़ी इज्जत का बायस है साजिद तारर साहब को वहाँ पर नॉमिनेट करना, स्टेज पर बुलाना और उनसे तकरीर करवाना, और मैं उसके लिए साजिद तारर साहब का दिल से उनको मुबारक पेश करता हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की एक मिराज होती है. तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा एक जेस्चर था, लेकिन उसके बावजूद ये आप ये समझिए कि पूरी कैंपेन जो उन्होंने चलाई है वो नफरत की बुनियाद पे चलाई है. उनको जो थोड़ा सपोर्ट मिला है, जो सर्टन बेल्ट में सर्टन इलाकों में यूनाइटेड स्टेट्स के, वो नफरत की बुनियाद पे मिला है. ये वो लोग हैं जिनका ज्यादा एक्सपोजर इस्लाम और मुसलमानों के साथ नहीं है, और वो सिर्फ फॉक्स टीवी पे और सीएनएन पे मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ बातें सुन के मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ ओपिनियन बना के बैठे हुए हैं. अब मैं समझता हूं कि वो जो इन्होंने इतनी सपोर्ट भी ली है रिपब्लिकन पार्टी के चार्टर के खिलाफ, रिपब्लिकन पार्टी के जो बेसिक्स हैं उनके खिलाफ भी जो उन्होंने सपोर्ट ले ली है वो भी नफरत की बुनियाद पे है. इतनी बड़ी कैंपेन को नफरत की बुनियाद पे चला के प्रेजिडेंशियल नॉमिनेशन ले लेना नफरत की बुनियाद पे, और उसके बाद आखिर में सिर्फ एक मुसलमान को स्टेज पे बुला के उसे तकरीर करवा लेना, इससे तहफ़ुज़ात दूर नहीं होंगे और ना मेरा ख्याल है उनकी डिपेंडेबिलिटी पे कोई पॉजिटिव असर पड़ेगा ट्रंप साहब की. क्योंकि जिस तरह मैंने पहले सर अर्ज किया है कि उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने नफरत की बुनियाद पे मुसलमानों के खिलाफ वोट लिए हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो अनस्टेबल हैं. ये दिस प्रूव्स इवन माय पॉइंट मच स्ट्रांगली कि वो इतने अनस्टेबल हैं कि वो तो एक लम्हे में एक सेकंड में कोई बात जो है वो उसको यू टर्न लेके और उसके खिलाफ बात भी कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस. अभी जिस तरह एक और बात मैं पेश करूं आपकी ऑडियंस की इंटरेस्ट के लिए कि तलत रशीद साहब ने फरमाया कि वो अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे जॉब्स वापस लाके. अब आप जो कोई भी जो प्रेसिडेंट या कोई भी जो कैंडिडेट या कोई भी जो बिजनेसमैन है उसकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता लग जाएगा कि उनका फ्यूचर में उनकी जो एक्टिविटीज क्या होंगी और उनकी अचीवमेंट्स क्या होंगी. डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलमानों के साथ बहुत नफरत करते हैं, जो पब्लिकली उन्होंने बहुत दफा ये बात कही, शायद एक दफा उन्होंने उसका उसको तरदीद भी की साजिद तारर साहब को तकरीर करवा के, लेकिन जनरली उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर मुसलमानों के साथ उनकी अपनी नफरत को नहीं छुपाया. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको एनालाइज करें एक रियलिस्टिक अंदाज से तो वो मुसलमानों के साथ नफरत नहीं करते, वो सिर्फ गरीब मुसलमानों के साथ नफरत करते हैं, बिकॉज उनकी दोस्ती दुनिया के अमीर तरीन मुसलमानों से है. दुबई में कई $100 मिलियन की कॉस्ट से उन्होंने जो अपना बिजनेस प्रोजेक्ट वहां पे बनाया है डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब, वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस चीज का कि वो अमेरिका से जॉब्स को चुरा के बाहर लेके जाएंगे. नंबर वन, He cannot make America great because वो अपनी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे तो बैंकरप्सियां अमरीका की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बैंकरप्सियां भी किसी एक ग्रुप ने जो फाइल की हैं वो ट्रंप एम्पायर ने की हैं. सो यहाँ से बैंकरप्सीज फाइल करके लोगों के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स बिजनेसमैन सप्लायर्स उनका पैसा दबा के और अपनी इन्वेस्टमेंट की है दुबई में जाके और दुबई के सहयोग के साथ उनकी जाती दोस्तियां हैं. सो ये बहुत अनस्टेबिलिटी वाली बातें हैं कि अपने मुल्क में तो आप लोगों को सब्ज बाग दिखाएं कि मैं जॉब्स वापस लेके आऊंगा, जबकि यहाँ पे आप अब अटलांटिक सिटी जाके देख लीजिए, अटलांटिक सिटी में किसी घोस्ट टाउन का गुमान होता है क्योंकि वहां पे जितने बड़े बड़े ट्रंप टावर्स और ट्रंप ताजमहल और ट्रंप कैसल और ट्रंप ये और ट्रंप वो जो थे सब एक एक करके बंद हो रहे हैं और हजारों लोग हैं जो जॉब जिनकी चली गई है. सो एक तरफ मुल्क में तो आप जॉबलेसनेस बढ़ा रहे हैं, आप ओवरसीज रिच मुसलमानों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, आप अपना पैसा अमेरिका के बैंकों से चुरा के और अमेरिका के सिस्टम को डिसीव करके और दुनिया में दूसरे ममालक में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हैं, आप किस तरह के प्रेजिडेंट होंगे? किस तरह एक आम आदमी, फॉरगेट अबाउट मुस्लिम, किस तरह एक आम आदमी का आप इंटरेस्ट वॉच करेंगे जब आपने सारी जिंदगी किया ही ये है कि बैंकरप्सियां फाइल की हैं और वो पैसा ले जाके दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट किया है? तो मुझे सच्ची बात यह है, नॉट जस्ट एज ए डेमोक्रेट, मैं तो सख्त परेशानी के आलम में हूं एज ए लॉयल, लॉ अबाइडिंग एंड लविंग अमेरिकन कि मेरे मुल्क का क्या हाल होगा खुदा ना खासा अगर ये शख्स प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है।
जी तलत रशीद साहब, फर्ज कीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बनते हैं तो इसका मतलब जो है अमेरिका के लिए, अमरीकियों के लिए और अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों के लिए क्या होगा? और मलिक नदीम साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका जवाब भी अगर आप दे दें प्लीज।
देखें मलिक साहब ठीक है, उन्होंने हाइपोथेटिकल जो है वो बातें की हैं। बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं तो ये चीजें होती हैं, बिजनेस में कोई 100% पैसा नहीं बनाता, अप्स एंड डाउन बिजनेस। अगर पता नहीं नदीम साहब बिजनेसमैन है या नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने कभी 100% पैसा नहीं बनाया, मुझे लॉस भी हुआ है, मुझे गेन भी हुए हैं। तो ये जो है ये कहना कि जी कि उन्होंने बैंकरप्सी करके पैसा बनाया, नहीं, दैट्स डिफरेंट। आई मीन ये इकॉनमी देखे ना, आप पिछले 5-6 साल से क्या हुआ इस मुल्क में, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बैंकरप्ट हो रही हैं लोगों के, लेकिन मकानों में कितना हो गया? अब जो ओबामा के दौर में हुआ ये सारा, पिछले आठ सालों में कितने फोरक्लोजर्स हुए हैं? अब ये हम ये नहीं कह सकते कि ओबामा ने किया, ये इकॉनमी का वो एक साइकिल होता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है वो बिजनेस के लिहाज से किए हैं, वो सब लीगल थी, उन्होंने ये नहीं किया कि पैसे चुरा के बताया, नहीं, उन्होंने जो यहाँ का लाभ को परमिट करता है उसके लिहाज से उन्होंने की है। मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। जहाँ तक ताल्लुक का है कि डॉलर चला पाएंगे और क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए मुश्किल होगा, आई डोंट थिंक सो। देखिएगा हम जो नफरत को नफरत से आप नहीं काट सकते, आप अगर एक आदमी आपके खिलाफ है तो यही मैं मुसलमानों को कहता हूँ, हमारे ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जाके उससे बात करेंगे कि आपको मसला क्या है मुसलमानों से, अनलेस के आप अपना मौकिफ उसको जाहिर नहीं करेंगे, वो अजम्पशन पे होंगे। इसलिए हम, मैं मुसलमानों को हमेशा कहता हूँ, जो भी कांग्रेसमैन सेनेटर आपके खिलाफ है, बजाय इसको कहेंगे कि अभी उससे दूर रहना चाहिए, उससे नहीं मिलना चाहिए, हमें उस ये बेटर अपॉर्चुनिटी है कि उससे बात, मैंने ट्रंप से बात की, मैंने आपसे कहा ओपनली, मैंने कहा उससे, मैंने कहा यू नो व्हाट आई मीन, यू हैव टू चेंज योर टोन यू नो अगेंस्ट मुस्लिम्स, और ही एग्रीड विद इट। उसने कहा ठीक है, यू नो मैं पॉजिटिव स्टेट मांगी, और हो सकता है कि ये जो तारीख आवाज थे यू नो स्टेज के, दैट मे बी अ बिगिनिंग। उसको भी पता है कि ठीक है वो मुसलमानों को नाराज नहीं कर सकते प्रेजेंट बनने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत से मुसलमान हैं यहाँ पे, इवन तो हम लोग वोट देते नहीं, ना ही हमारा वोट बैंक है, आई मीन आई हैव टू से इट, आई मीन मैं इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ रिपब्लिकन पार्टी का, लेकिन है कि मुझे मुसलमानों ने कोई वोट नहीं दिए, मुझे वोट ज्यादातर अमेरिकन ने दिए हैं, और हम लोग कह तो देते हैं जी कि हम मुसलमान अपने चेंज कर देंगे क्या कहते हैं पॉलिटिकल उससे, ये दिस इज इम्पॉसिबल। हमारे मुसलमानों में बहुत मसला है ये, आई मीन वोट ड्राइव बहुत कम है, जो वोटर्स हैं वो वोट देते ही नहीं। लेकिन उससे मैं तो कहता हूँ कि ठीक है ट्रंप आएंगे, हमें उनके साथ जो है मिलके काम करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम फैब्रिक है इस कंट्री की, अमेरिका की, और हम ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क के साथ मिलके काम करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें।
ठीक ओके, कुछ कॉलर्स हैं लाइन पे पाकिस्तान से, उनको भी हम सुनना चाहेंगे इस मौजू पे। मलिक नदीम आबिद साहब और तलत रशीद साहब, आप दोनों हमारे साथ रहिए मजीद कुछ देर के लिए। इस वक्त हमें बताया जा रहा है एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक से वापस आकर इसी से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राउंड टेबल, मैं हूं आपकी मेजबान शहनाज नफीस और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं असवर इमाम। इस वक्त हमारे साथ हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के मलिक नदीम आबिद साहब और रिपब्लिकन जमात के तलत रशीद साहब। इस वक्त चलते हैं मियाँ वाली मुरीद खान हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुरीद साहब। जी मुरीद साहब आप बात कीजिए, आपको आवाज आ रही है। ओके, उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। खोशाब से अख्तर हुसैन साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी इस वक्त जी जी अख्तर अख्तर हुसैन साहब बात कर रहे हैं।
जी
जी सर,
सबसे पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की आर्थिक उम्मीदवार मुंतखब होने पर पाकिस्तान कौम और अपनी तरफ से मुखालफत पेश करता हूँ।
जी
तो हमेशा जो रिपब्लिकन है ना जी, वो सदर हमेशा पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया के हक में बेहतर रहे हैं। और आपको पता है कि हिलरी क्लिंटन साहब को तो पहले आजमा चुके हैं, पाकिस्तानी फौज ने 60,000 अफराद की कुर्बानियां दी और ये फिर भी डू मोर का नारा लगाती रही हैं। तो मेरी ये पाकिस्तानी कम्युनिटी से, अमेरिका में रहने वालों से गुजारिश है कि डोनाल्ड ट्रंप को मजबूत करें ताकि वो एक अच्छे सदर के तौर पर मुस्लिम दुनिया के साथ उनके रवाबत बांट सकें। शुक्रिया जी।
ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच कॉल करने का शुक्रिया। कामयाब बंगेश कुहाट से, अस्सलाम वालेकुम। जी कामयाब बंगेश साहब,
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी कामयाब बंगेश साहब, आपकी आवाज जो है लाइंस इस वक्त क्लियर नहीं है, आपकी आवाज सही तौर पर हम तक नहीं आ रही है, बाद में आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। मलिक नदीम साहब, आप हमें बताइएगा, यानी जो तारीख है उस पर नजर डालते हुए कि कौन सी पार्टी जो है वो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं उसके लिए बेहतर रही है, रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी?
जी मैं डेफिनेटली उस पर अपनी छोटी सी नॉलेज के मुताबिक लाइट डालूंगा, लेकिन मैं अपने भाई तलत रशीद साहब की एक बात का क्विकली जवाब दूंगा आपकी इजाजत से।
जी जी।
कि आपने फरमाया जो कानून इजाजत देता है उसके मुताबिक उन्होंने बैंकरप्सी फाइल्स की, तो बात यह है कि कानून तो आपको बहुत सारी चीजों की इजाजत देता है इस लिहाज से कि आप कत्ल भी करते हैं तो बाज़ औक़ात कानून की मुशगाफियों से आप उसमें से सजा से बच जाते हैं। दैट डज नॉट मीन कि आपको कानून कत्ल की इजाजत देता है। मैं आपके नाजरीन की और सामईन की इंटरेस्ट के लिए छोटी सी बात अर्ज करूं, 1991 में ट्रंप ताजमहल ने पहली बैंकरप्सी फाइल की, $3 बिलियन की बैंकरप्सी थी जिसमें से $900 मिलियन ऑलमोस्ट $1 बिलियन जो लोगों की सर्विसेज और सैलरीज और उनके जो उन्होंने काम किए थे उसको फोरफीट किया गया। $900 मिलियन बैंक का और सिस्टम का हमारे देशी जुबान में जो कहते हैं ट्रंप साहब ने खा लिया और बैंकरप्सी को सक्सेसफुली उसको हैंडल कर लिया। उससे पहले 1988 में उन्होंने $390 मिलियन की बैंकरप्सी फाइल की, 1992 में उन्होंने $550 मिलियन की बैंकरप्सी फाइल की। और क्या वजह है कि इनके सारे प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट आज तक इन्होंने शुरू किए हैं 1980 से लेके अब तक, हर प्रोजेक्ट ने बैंकरप्सी फाइल की है अमरीका में। और अभी तक ये जो कई साल हो गए हैं दुबई में जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है $300-400 मिलियन का प्रोजेक्ट जो गोल्फ क्लब का, वो अब तक बैंकरप्ट क्यों नहीं हुआ? ये सारे प्रोजेक्ट अमरीका के हार्ड वर्किंग जो मेहनती जफाकश लोग हैं बेचारे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, जो जॉब्स करते हैं, उन्हीं की कॉस्ट के ऊपर सारी ये बैंकरप्सीज क्यों फाइल हुई हैं? ये तो मेरा एक सवाल है, अगर जवाब देना चाहें तलत साहब तो
जी, बिल्कुल। और इसके साथ बिल्कुल तलत रशीद साहब, इसका अगर आप जवाब दें क्योंकि ये अहम पॉइंट उन्होंने उठाया है। और मुझे इनका डोनाल्ड ट्रंप का एक खिताब भी याद है जिसमें इन्होंने कहा था अमरीका पर जो कर्जा है उसको ख़त्म करने से इन्होंने ये बात की थी कि अगर वो हुकूमत में आते हैं इक्तदार में तो वो इस अमेरिका पर कर्जे को ख़त्म करने के लिए इसको बैंक करप्ट जो हैं वो कर देंगे। तो एक हुकूमत जो है अगर वो ऐसा करती हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त हम सुपर पावर की बात कर रहे हैं, अमेरिका जो है एक आम मुल्क नहीं है, तो इसका इम्पेक्ट और इस तरह के बयानात जो हैं इन्हीं को सामने रख कर लोग जो हैं इस तहफ़ुज़ात के इजहार कर रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बनते हैं जिस तरह के वो मकबूल होते जा रहे हैं दिन ब दिन हम देख रहे हैं, तो इसके नताइज कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या होंगे?
नहीं देखिए, पहले तो मैं आपके कॉलर उनका जवाब देता हूँ. उन्होंने जो कुछ बातें की हैं मैं एग्री करता हूँ उनसे, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा. लेकिन देखिए ना, अभी ट्रंप नहीं है जिन्होंने बैंक्रप्ट, यहाँ पे स्टील मिल्स हैं. यहाँ इंडियाना में देखिए ना, काफी स्टील मिल्स हैं. कितनी स्टील मिल्स हैं जिन्होंने बैंक्रप्टसी फाइल की है, कितनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है. बल्कि जनरल मोटर्स, आप शायद इनको, आपके कॉलर को पता होना चाहिए, उनको बेल आउट किसने किया? उनको बेल आउट किया गवर्नमेंट ने, वरना तो इनकी ये पूरी जो है ऑटो इंडस्ट्री बैठ जाती वो. अब ये उसमें डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ी हाथ था.
सही.
ये चीजें जो है ये होती हैं, ये बिजनेस का समझ लें एक एवेन्यू होता है जिसमें जब आप इतने डाउन चले जाते हैं, यू नो यू हैव नो चॉइस, और फिर ये परमिशन मिलती है. हालांकि ये नहीं करनी चाहिए. मैं एग्री करता हूँ कि काफी लोग जो है, छोटी छोटी कंपनी जो है वो उन पर बहुत बर्डन हो जाता है कि उनके पेमेंट वगैरह नहीं होते. लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को मैं इसलिए आस नहीं, अपने आप अगर देखें पाकिस्तान में तो लोग पैसे चोरी करके चले जाते हैं, बैंकरप्सी भी नहीं बताते. वो तो ऐसे ऐसे लोन लेते हैं करोड़ों रुपए के, वापस भी नहीं करते वो, ना ही बताते हैं वो. मतलब ये चीज जो है ना, इसके हट से, इस बात से हट के हम कहते हैं कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो वाकई जो इस मुल्क के लिए कर सके. और अगर अगर यही बैंकरप्सी वगैरह होती तो डोनाल्ड ट्रंप इतने ऊपर क्यों आ जाते? अगर लोग ये कहते हैं इसने बैंकरप्ट कर दिया है, ये कर दिया है,
लेकिन क्या एक अगर हम ये मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन थे, और वो बात की भी जाती है कि एक रोल मॉडल है बिजनेस की जब हम बात करते हैं, खासतौर पर यहाँ अमरीका में लोगों के लिए, तो क्या एक कामयाब बिजनेसमैन एक कामयाब सदर साबित हो सकते हैं?
जी हाँ, जो बातें कह रहे हैं, लेकिन ये तो पता चलेगा ना जब वहां पे आएंगे. ज्यादातर पॉलिटिशियन तो आपको लिप टॉक देते हैं. आप कोई भी देख लें, ओबामा भी देख लें, उन्होंने भी किया, उन्होंने हम ये कर देंगे. उनके जमाने में सबसे ज्यादा देखें जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, उसके खिलाफ है. और ये लिप सर्विस सारे पॉलिटिशियन देते हैं. होता है कि जब वो सीट पे बैठते हैं तब उनको पता चलता है कि वो कितने पानी में है और क्या कर सकते हैं. लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अब उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट अच्छा पिक किया है, तो वो कोशिश करेंगे इस इकॉनमी को रिवाइटलाइज करें. और वो बहुत जरूरी है, वरना है कि वो फोर टर्म प्रेसिडेंट रहेंगे. वो यही कोशिश करेंगे जो उनसे हो सकता है. अब एडवाइजर अच्छे होंगे. अब चूंकि वो क्लियर कैंडिडेट हैं, अब उनके पास चॉइस है कि वो अच्छे अच्छे एडवाइजर पिक करें जो इस मुल्क को नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सकें.
ओके,
मुझे जरा इजाजत देंगे.
जी जी, प्लीज मलिक नदीम साहब, प्लीज. जी
जी, बहुत शुक्रिया जी. पहली बात तो ये, भी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त तलत रशीद साहब ने ये सवाल किया था कि मलिक साहब पता नहीं बिजनेसमैन हैं कि नहीं है, वो बिजनेस की नजाकतों को समझते हैं कि नहीं. मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं हूं, लेकिन छोटा मोटा बिजनेस मैं भी करता हूं. और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुश्किल वक्त के बावजूद जो कानून में मुझे रियायत दी गई है कि मैं चाहूं तो मैं भी बैंकरप्सी फाइल करके लोगों के पैसे दबा के और अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लूं, अल्लाह का शुक्र है हमने आज तक बैंकरप्सी फाइल नहीं की और ना करेंगे. और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में जो आपने बात की कि उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बैंकरप्ट करने का, उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था. अगेन ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें जानना. उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कि मैं प्रेसिडेंट बनते ही चाइना का सारा डेट फोरफीट कर दूंगा. जिससे आपने भी ये बात कही कि मैं बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दूंगा अमेरिका को, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, दुनिया सारी में इसका रिएक्शन बहुत नेगेटिव आ रहा है. आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो चाइना ने हमें अमेरिका को एज ए नेशन उधार दिया हुआ है, हमारी इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सारा चाइना के उधार पे, कर्ज पे चल रहा है. आप जिस वक्त एज ए प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट, एज ए सीरियस कंटेंडर, आप ये बात करते हैं कि हम तो उनका पैसा सारा दबा जाएंगे. दिस इज नॉट ट्रंप ताजमहल, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आप जिस वक्त ये बात करते हैं, आपकी एज ए कंट्री क्रेडिबिलिटी दुनिया सारी में और इकोनॉमिक वर्ल्ड में क्या रह जाती है? ये मुझे बताइए कि जिस वक्त आप उधार देने वालों से, जिन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, आप ये कहें कि हम तो उनका उधार दबा लेंगे और इनकार कर देंगे देने से, उसकी कंट्री एज ए कंट्री, एज ए नेशन, हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया में क्या रह जाती है?
ठीक, ओके. दोबारा कॉलर्स की जानिब जाना चाहेंगे. कुहाट से राज मोहम्मद जी, अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम
जी सर.
इससे पहले भी मैंने दो दफा कॉल की थी
जी,
तो मैंने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के लिए गम है.
अच्छा,
लेकिन अब देखो वो वक्त आ गया है कि अल्लाह करे कि ये मुसलमानों के लिए अच्छा साबित हो.
जी.
और अल्लाह ताला इसको अमेरिका के लिए अच्छा करे और हमारे जो मुसलमान यहाँ पे मुकीम है उनके लिए अच्छा करे.
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका. सरगोदा से है फतहुल्ला इमरान साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. सरगोदा से फतहुल्ला इमरान.
हेलो.
जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बात करें.
हाँ जी, मैं पहाड़ से बोल रहा हूँ, राज मोहम्मद.
जी सर.
मेरी लाइन कटी नहीं है अभी तक.
आपकी लाइन अभी कटी नहीं है, बहुत शुक्रिया.
आपकी लाइन कट गई, वो हमें बहुत अफसोस है.
अच्छा, वो दोबारा हमारे साथ लाइन पे हैं, उनको हम सुनते हैं. लेकिन सरगोदा जाना चाहेंगे. फतहुल्ला इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे? एक और कॉलर है. फतहुल्ला इमरान साहब की आवाज. जी जी,
मैं जी राज मोहम्मद पहाड़ से बोल रहा हूँ.
आपको हमने सुन लिया राज मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का. मुरीद साहब मियावाली से. ओके सामीन, आज हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं, ख़ास तौर पर हमारे लिसनर्स की जो टोल फ्री नंबर है, उसमें हमें कुछ ख़राबी नज़र आ रही है. लेकिन आप हमें कॉल करते रहिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइम दे और आपकी जो राय है वो भी हम सुन सकें कि आप डोनाल्ड ट्रंप की नामज़दगी को किस तरह देखते हैं. इस वक्त आपकी जानिब मैं आना चाहूँगी. मलिक नदीम साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह सदर ओबामा इंतज़ामिया की वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उसके हवाले से दोनों मुल्कों के माबेन के जो ताल्लुकात हैं इन 8 सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव जो है हमने देखा है. हकानी नेटवर्क का मसला है, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार हुआ, इमदाद देना या ना देना इस पे भी कांग्रेस में बहस जो है वो होती रही है, पाक भारत ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान में मौजूद मुबैना दहशतगर्द ग्रुप्स हैं. इस हवाले से क्या आप देखते हैं कि अगर रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उनकी भी वही पॉलिसी होगी जो कि हिलरी क्लिंटन की थी? और ये सवाल तलत रशीद साहब, सॉरी, इसका जवाब आप बता दें मुझे.
रिपीट कहेंगे आप, क्या कह रही थी?
जी, ये मैं कह रही थी कि पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है ओबामा इंतजामिया की, क्या वही पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बनते हैं उनकी भी वही होंगी?
देखिए ना, जो पॉलिसीज होती है ना वो प्रेसिडेंट हाँ इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन वो इनकी जो है वो पॉलिसीज ऑलरेडी होती है. वो तो जो भी इस किस्म की होती है वो कांग्रेस बनाती है, सेनेट बनाती है. प्रेसिडेंट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है और वो यही करते हैं जो इनके मुल्क के लिए बेहतर हो.
ठीक,
और इसमें कोई
तो डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बनते हैं कहाँ तक वो इन्फ्लुएंस आपके ख्याल में करेंगे, किस हद तक, और वो इन्फ्लुएंस जो है उसकी सूरत क्या होगी?
वो इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि अपने जैसे ही वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो स्ट्रांग रहे, और उस हद तक वो करेंगे. लेकिन ये है कि मैंने कहा सेनेटर और कांग्रेसमैन वगैरह इसको 100% श्योर कि उनको कॉर्नर करेंगे जहां पे ये हद से बढ़ जाएंगे.
जी ओके. और इस वक्त इस पे मलिक नदीम साहब आप कोई कमेंट करना चाहेंगे?
जी मैं पार्शली अगेन अपने भाई तलत रशीद साहब से एग्री करूंगा जो उन्होंने शुरू में कमेंट किया था और अभी भी उन्होंने फरमाया कि प्रेसिडेंट्स के ऊपर 100% अथॉरिटी उनके पास नहीं होती ये फॉरेन रिलेशंस को चेंज करने की. और दूसरा मैं ये भी अर्ज करूं कि ये थोड़ा बहुत जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की टोन में थोड़ा सा चेंज आया है, यहाँ पे सिस्टम कुछ इस तरह है इस मुल्क में कि जब एक फॉर्मली एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट हो जाता है उसको वो हर तरह का प्रोटोकॉल मिलता है जो किसी भी प्रेसिडेंट को, सिटिंग प्रेसिडेंट को मिलता है. और उसी तरह न सिर्फ उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी उसी तरह मिलती है जिस तरह प्रेसिडेंट को मिलती है, बल्कि उनको ब्रीफिंग्स भी दी जाती हैं, जो टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग्स जो प्रेसिडेंट ओबामा को हर रोज दी जाती हैं आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी दी जा रही हैं. सो उनके जो टोन में थोड़ी सी तब्दीली आई है वो इसीलिए आई है कि उनको मेरा ख्याल है कहा गया कि भाई साहब जरा थोड़ा सा कूल डाउन. सो उनको उनकी लिमिट्स बता दी गई हैं कि ये आपके लिमिट्स हैं, इनसे आपने एक्सीड नहीं करना. और फॉरेन रिलेशंस जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ रिलेशन के सिलसिले में आपने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, जो मैं थोड़ी सा मेरे जेन से निकल गया जवाब देना, कि डेमोक्रेट या रिपब्लिकन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात क्या होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डिफाइन करने वाली पावर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकली और मॉरली करप्ट होगी तो वो यहां से अपने अमेरिका के हुक्मरानों से या अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छी तरह स्ट्रांगली निगोशिएट नहीं कर सकते। जितना कुछ पाकिस्तान ने किया है अमेरिका के लिए, बल्कि ये वॉर अगेंस्ट टेरर में ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन उस सारा कुछ करने के बावजूद अगर जिस तरह भी आपने तलत ऋषि साहब ने भी फरमाया डू मोर की रट, वो सिर्फ प्रेजिडेंट ओबामा की रट नहीं, वो हर प्रेजिडेंट की रट है। इसलिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ की वो प्रेशर डालने के लिए हर वक्त तैयार होती है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स हैं वो पॉलिटिकली और मॉरली स्ट्रांग नहीं है। जिस वक्त आपका प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पे आए और पूरे 10 दिन रूजवेल्ट होटल में बैठ के और अपने पाकिस्तान से आए हुए जर्नलिस्टों के साथ बैठ के गपशप करे और कोई बायलैटरल किस्म की वो मीटिंग्स ना करे, कोई यहाँ पे लॉबिंग ना हो, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप किस तरह बेहतर होंगे? तो ये प्रेशर तो चाहे ओबामा साहब हों, चाहे अब हिलरी क्लिंटन आए या डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, मुझे ये फोर्सिएबल फ्यूचर में ये रिलेशनशिप बेहतर होते हुए नजर नहीं आते हैं।
ठीक है, यानी पाकिस्तान के लिए चाहे हिलरी क्लिंटन हो या डोनाल्ड ट्रंप, आप लोगों का ये कहना है और आप लोगों ने इस पे इत्तेफाक किया है कि पॉलिसी जो है अमेरिका की वो एक जैसी रहेगी, कोई बहुत बड़ा उसमें फर्क जो है डिफरेंस हमें नजर नहीं आएगा। इस वक्त हमें शकील सैयद साहब ने ज्वाइन किया है, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं केयर के, केयर सामीन अमेरिका में मुसलमानों की एक मशहूर तंजीम है जो मुसलमानों के हकूक के लिए काम करती है। इस वक्त शकील सैयद साहब आपको आवाज आ रही है, हमारे साथ हैं? कोई लाइन, जी जी उनकी लाइन ड्रॉप हुई है। ये बताइएगा तलत रशीद साहब के एक बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त है दाइश का, आईएसआईएस का, उस हवाले से हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में फर्क क्या है जब इस दहशतगर्द तंजीम से लड़ने की हम बात करते हैं?
आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमेशा बल्कि ओपनली कहा है कि ये जो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है इसको हमने एलिमिनेट करना है। अब कैसे करेंगे वो जो इनकी डिफेंस मिलिट्री है यही इसको ब्रीफिंग देगी कि किस लिहाज से हम करेंगे। अब उस न्यूज में भी था कि वो 20,000 to 30,000 ट्रुप्स वहां पे रखेंगे जो भी करेंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आईएसएस का यहाँ पे यूएस में इतना इन्फ्लुएंस ना हो। और डोनाल्ड ट्रंप एग्री करते हैं, उन्होंने कहा कि जो सद्दाम हुसैन को निकालना वो अमेरिका की फेवर में नहीं था, उन्होंने गलत काम किया। ही एग्रीज कुछ चीजें जो ऐसी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो बढ़ता हुआ जो नासूर है जिसको आप कह सकते हैं वो अमेरिका नहीं मुसलमानों को भी खा रहा है। और जो मेरे इंटरव्यूज होते हैं, बल्कि आज भी शिकागो ट्रिब्यून के अंदर उन्होंने मुझे कोट किया है, मैं यही कहता हूँ कि ये जितनी भी पॉलिसीज वगैरह जो है ये बनती है, ये बल्कि नदीम साहब भी एग्री करते हैं मुझसे, बल्कि नदीम साहब को रिपब्लिकन होना चाहिए, उन्होंने काफी बातें जो है वो मुझसे उन्होंने एग्री की है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बातें होती हैं, जितने भी हैं ब्रीफिंग्स वगैरह होती है ये सब जो वजीर दिफा वगैरह समझ लें या इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इफेक्ट करती है इसको।
ठीक, मलिक नदीम साहब ये बताइएगा, आईएसआईएस से लड़ने की निमटने की जब हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने इस कैंपेन के दौरान काफ़ी ओबामा इंतज़ामिया को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हिलरी क्लिंटन जो हैं वो उनकी जो पॉलिसी है अब क्या देखते हैं, वो ओबामा से मुख्तलिफ होंगी या फिर इसी पॉलिसी को वो जारी रखेंगे अगर वो सदर बनती हैं तो?
शहनाज चिसरा, मैंने पहले अर्ज किया था ये जो पॉलिसीज हैं स्पेशली ये डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज जो है ये चेंज नहीं होती किसी प्रेसिडेंट की मर्जी से। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी और ये पेंटागन ये लोग बनाते हैं, और इसीलिए अगर आप आज के बाद ये या कल येस्टरडे के बाद अगर आप वॉच करना शुरू करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की टोन में भी ये दाइश के साथ फाइट और आईएसआईएस के साथ फाइट उसमें भी चेंजेस आएंगे, बिकॉज अब उनको ब्रीफिंग देना शुरू कर दी गई है। सो इसमें चेंजेस कोई नहीं आएंगी, लेकिन मेरी जाती राय एज ए कंसर्न्ड अमेरिकन, ये मेरा सवाल डेमोक्रेट से भी होगा और रिपब्लिकन से भी होगा, जिसका कोई जवाब नहीं देगा मुझे मालूम है। ये कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर की इंटेलिजेंस से भी स्ट्रांग है? इनका फंडिंग सोर्स क्या है? इनकी सप्लाई सोर्स क्या है? किस तरह इनको दुनिया में सबसे पावरफुल जो ट्रांसपोर्ट जो जो व्हीकल्स हैं और वेपन्स हैं, वो बेहतरीन वेपन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, मैं आपको यकीन से बताता हूं कि ये दाइश को हम डिफीट नहीं कर सकेंगे, आईसिस को भी डिफीट नहीं कर सकेंगे और तालिबान को भी नहीं कर सकेंगे। कि इतने ज्यादा रिमोट एरियाज में रहने वाले तालिबान को भी वो सर्विसेज अवेलेबल हैं वेपन्स के सिलसिले में भी और कम्युनिकेशन के सिलसिले में भी, जो इवन अमेरिका में भी लोगों को मालूम नहीं है। तो ये कौन उनको प्रोवाइड कर रहा है? सो ये मेरा सवाल अब एज ए डेमोक्रेट, एज ए रिपब्लिकन नहीं है, एज ए कंसर्न्ड यूएस सिटीजन है। बिकॉज जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी अमेरिका के दिफा के लिए, अगर उसमें लॉजिक है, अगर वो स्ट्रांग है, तो मैं हर उस पॉलिसी को सपोर्ट करूंगा, चाहे वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो या वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो। बिकॉज ये मुल्क मेरा मुल्क है, इसमें मुझे अपनी बेटी को और तलत रशीद साहब के बच्चों को और आपके बच्चों को, हम सब के बच्चों को इस पे ग्रो करना है, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करना है। सो वी लव अमेरिका
जी। लेकिन मलिक नदीम साहब, जो सवालात आपने उठाए हैं मुझे याद है, यही क्वेश्चंस बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने खिताबात में उठाते रहे हैं, वही तलत रशीद वाली बात कि आपको रिपब्लिकन पार्टी में होना चाहिए।
नहीं, लेकिन अब वो बात मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अब वो तमाम सवालात डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं करेंगे, बिकॉज जिनसे वो सवालात करने चाहिए वो ही उनको ब्रीफिंग दे रहे होंगे।
ओके, सही, ठीक। ओके, इस वक्त शकील सैयद साहब की लाइन हमें दोबारा मिली है, उनकी जानिब जाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील सैयद साहब।
वालेकुम अस्सलाम
जी। शकील सैयद साहब, रिपब्लिकन पार्टी का जो कौमी कन्वेंशन हो रहा है क्लीवलैंड में, वहाँ पे आपका जो इदारा है केयर, इन्होंने कुछ मुजाहरे किए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी और मकसद क्या था इसका?
जी जी जी, तो एहतजाज की सूरत हाल ये है कि ये कौमी कन्वेंशन नहीं बल्कि कौमी सर्कस है जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है, और जिस अंदाज से कौमी मिजाज बदल चुका है पिछले एक से डेढ़ साल के दरमियान, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए तश्वीशनाक है। ट्रंप साहब जीतेंगे कि हारेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के जो सरबरा हैं, उन्होंने जो कौम का एक मिजाज और फिक्र जो तब्दील की है खौफ की बुनियाद पे, इस्लाम के खौफ की बुनियाद पर, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सबसे बड़ी हमारी वो कंसर्न है। उसी वजह से हम उसको चाहते ये हैं कि जिस हद तक हो सके वो लीडरशिप लेवल पे और पॉपुलर लेवल पे इस बात को एम्पलीफाई करें कि ये न सिर्फ कौम के लिए, मुसलमान और इस्लाम के लिए गलत है, बल्कि मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा इन लॉन्ग टर्म। ट्रंप साहब अपने टावर में चले जाएंगे इलेक्शन के बाद या व्हाइट हाउस में जाएंगे उसके, लेकिन ये कि जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अमेरिकन हु आर कंडीशन्ड बाय डिजाइन इन ए कंसर्टेड फैशन टू हेट मुस्लिम अमेरिकन्स एंड इस्लाम, ए फेथ ऑफ बिलियन पीपल, बिलियन एंड हाफ पीपल, इज आवर प्राइमरी कंसर्न, और उस कंसर्न को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं जिस हद तक हो सके।
तो आप कहाँ तक अपने इस मकसद में कामयाब हुए हैं? अब तो उनकी बाजाबता नामजदगी भी हो चुकी है।
या आई मीन यू नो कामयाबी या अदरवाइज ये वक्त ही बताएगा। हमारी कोशिश ये है कि जो हमसे बन पड़ता है वो हमें करना चाहिए बिला लिहाज इसके कि उसके नतायज क्या हों।
ओके,
जब खतरा आदमी महसूस करता है तो वो सर्वाइवल के लिए दे हैव टू डू व्हाट दे कैन डू एंड दे शुड डू। न सिर्फ मुसलमान ये कर रहे हैं बल्कि मुल्क में मुख्तलिफ एथनीसिटीज, मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ फिक्र के लोग, एकेडेमिक्स, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, बिजनेस, सभी को कंसर्न है, न सिर्फ हमें कंसर्न है। हमारी कंसर्न जाहिर बात है ملٹیپل ہے. ایک تو یہ کہ دین اور ایتھنک کی آسپیکٹ سے, اور دوسرے بحیثیت اس ملک کے باشندے, اس ملک کے ٹیکس پیئنگ سٹیزنز کی حیثیت سے. تو
لیکن ہمارے ساتھ طلعت رشید صاحب ہیں اور ان سے میں نے کچھ اسی طرح کا کوسچن کیا تھا پروگرام کے شروع میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خود ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور اس ایشو کو انہوں نے اٹھایا ہے ان کے ساتھ, اور ان کے بقول یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں ان کو ضرورت سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ سیریس لے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں شکیل سید صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر ہم سنیں, ان کے خطابات کو دیکھیں, تو وہ تو داعش کے خلاف ہیں, اللیگل امیگریشن کے وہ خلاف ہیں, اور ان چیزوں سے زیادہ نقصان جو ہے وہ تو مسلمان کمیونٹی جو ہے ان کو ہو رہا ہے. تو آپ کا جو ادارہ ہے اور جو اسلامی ادارے ہیں, تنظیمیں ہیں, ان کو تو اس سے خوش ہونا چاہیے.
With respect, I disagree. یہ کہ جو بھی سیاسی لیڈران ہوتے ہیں ان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے کیمپین کے دوران اور پاور میں آنے کے درمیان, بے شک وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتا ہے, ان لوگوں کا خمیر جو ہے وہ مورل اور ایتھیکل گراؤنڈس پہ نہیں ہوتا بلکہ وننگ اور لوزنگ گراؤنڈس پہ ہوتا ہے. تو ان کی جو ریٹرک ہے اس کے اثرات اس وقت ہماری تنظیم اور دوسرے تنظیموں نے ڈاکیومنٹ کیا ہے, 268 انسیڈنسز آف ہیٹ کرائم اگینسٹ مسلمز اینڈ مساجد. تو یہ کوئی حادثتاً نہیں ہوا ہے. اس وقت جو ملک کا مزاج ہے عام مسلمانوں کے خلاف, وہ اس شدت کے ساتھ اس کا اظہار ہو رہا ہے جو پچھلے 16 سال پہلے 9/11 کے بعد بھی اتنا شدید نہیں تھا.
ٹھیک.
تو لوگوں کا خیال, بے شک میں طلعت رشید بھائی یا جو بھائی کا یہ خیال ہے, احترام کے ساتھ میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ یہ سیاسی لوگ, وہ چاہے امریکہ میں ہوں کہ پاکستان میں ہوں, ان کا خمیر سب ایک ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پہ صرف جیتنے اور ہارنے کی چکر میں ہوتے ہیں. ان کو مورل اور ایتھکس ان کی کوئی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
کہیں گے کچھ کریں گے کچھ اور.
اوکے, کالرز بھی کافی زیادہ ہیں, ان کی جانب بھی جانا چاہیں گے. لیکن طلعت رشید صاحب, آپ نے سنا شکیل کیئر تنظیم کے شکیل سید صاحب کو, آپ جواب میں اگر کچھ کہنا چاہیں ان کے تحفظات آپ نے سنے.
ان کے جواب دوں گا, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی اوپینین کی, لیکن دیکھیں نا, ہماری جتنی بھی مسلمان آرگنائزیشن ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کارنر کیا ہے کہ جی آپ ایسی سٹیٹمنٹ کیوں کہہ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے خود اس بات کو کہا ہے کہ 9/11 کے بعد یہ حرکتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا قصور ہے؟ یہ اوباما نے 8 سال میں کیا, ہم نے اوباما سے کہا جا کے جی کہ یہ ریٹرک جو ہے اس کو چینج کرے؟ نہیں, یہ جو ہے یہ ایک قسم کی ایسی وہ مسلمانوں کے خلاف جو باتیں چل رہی ہیں, ہمارا کام ہے کہ اس کو ان جو بھی پریزیڈنٹس ہیں یا جو بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس جا کے ان سے باتیں کریں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو ہیٹریڈ ان کے خلاف کریں اور دور رہیں ان سے. لیکن اب تو اب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ مسلمانوں کو جو بھی ہے آپ کو نکال لیتے ہیں, آپ 50 دفعہ پوچھتے ہیں, ہم یہ سوالات کرتے ہیں. تو کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے نہیں ہو رہا؟ ہاں ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس بات کو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ بات یہ کہ یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں, دوسرے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اندر سے کر رہے ہیں لیکن اوپنلی اس بات کو نہیں کہہ رہے ہیں.
ٹھیک, اوکے,
میں کچھ عرض کروں ایک سیکنڈ.
جی ملک ردیم صاحب مختصر, کیونکہ کالرز کی جانب بھی جانا ہے, پلیز. جی
جی, میں شکیل سید صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ یہ پریزیڈنٹ بنیں گے یا نہیں بنیں گے, لیکن جو آئیڈیالوجی انہوں نے امریکہ کو دے دی ہے, یہ نفرت کی سیاست کی, اور جو نفرت کا بیج انہوں نے بو دیا ہے, یہ صرف اب مسلمانوں کے خلاف یہ درخت نہیں بنے گا, اس درخت پہ اور بہت سارے بھی پھل لگیں گے. اور یہ ملک کو انہوں نے اس ملک کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ایک نفرت کی سیاست کو ابتدا کر کے.
جی کالرز کی جانب جانا چاہیں گے, مرید خان میاوالی سے. السلام علیکم, مختصر پلیز.
السلام علیکم جناب, جی خیر سے یاد کر رہا ہوں. ہیلو,
جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی, مرید صاحب آواز آ رہی ہے.
میں میری عرض یہ ہے کہ ایک دہشت گردی کی جنگ جاری ہے پوری دنیا میں, اور امریکی عوام جو اتنی حساس عوام ہے وہ ایک جنگجو کو کیوں صدر بنانا چاہتی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رم صاحب نے مسلمانوں کے خلاف بات کر کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. مسلمان تو چونٹی پر پاؤں رکھنا نہیں چاہتے اور مسلمانوں کو اس نے خطرناک کہا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہے اور سپر پاور ہے. اگر سپر پاور کی یہ پالیسی ہوئی تو پھر تو وہ دنیا میں افراتفری ہوگی, پوری دنیا جنگ کا میدان بن جائے گی. جناب
جی مرید صاحب بہت شکریہ, لیکن آپ کے جو تاثرات ہیں جو رائے ہیں اس سے طلعت رشید صاحب اور ساجد تارر صاحب ایگری نہیں کرتے. نیکسٹ کالر کو بھی سنتے ہیں, دیر سے لیاقت الملک. السلام علیکم لیاقت الملک صاحب, دیر سے. اوکے ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. یوب سے اس شو کے لاسٹ کالر شیر علی, السلام علیکم. جی شیر علی صاحب, اوکے آپ طلعت رشید صاحب ہمارے کالر کو آپ نے سنا تو آپ اگر کچھ کہنا چاہیں جواب میں.
نہیں آئی تھنک وہ ظاہر ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. ہم نے یو نو ریپیٹیٹیولی کافی دفعہ یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ جو ریٹرک جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کیا ہے مسلمانوں کے خلاف, اب دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے نا جسے ندیم صاحب نے کہا نا, جب آدمی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ بن جاتا ہے نا اور نامینیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ خود نہیں کہتا جو وہ اس سے پہلے کہتا تھا. اس کو بریفنگ ہوتی ہے, وہ اس کے لحاظ سے چینج کرتے ہیں, پلس ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ باتیں کہنی ہے یہ نہیں کہنی. تو یہ جو ہے یہ کیونکہ دیکھیں نا پریزیڈنٹ بننے کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, آپ کو اٹس آن دا جاب ٹریننگ. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلتی ہیں. جب یہ دیکھیے اگلے جو ہے پانچ چھ مہینے میں یہ یو ول فائنڈ ہم اے ویری ریفائنڈ کینڈیڈیٹ, اور خدا کرے اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی بالکل کلوز ڈور نہیں ہونا چاہیے, ہمیں چاہیے کہ اب ان کی جیسے کیمپین شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ٹھیک ہے مسلمان حالانکہ وہ ہمارے خلاف ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کی فیور میں ہیں اور ان کی ٹون کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں ٹو دی بینیفٹ آف اس اینڈ فار بینیفٹ آف پاکستان.
جی ملک ندیم صاحب ایک منٹ ہے, آپ وائنڈ اپ پلیز کیجئے گا اس سے پہلے کہ میں اجازت مانگوں.
دیکھیں میں نے جس سے پہلے عرض کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ذاتی رائے سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, نہ ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ وہ یہ نفرت کی سیاست کر کے پریزیڈنٹ بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے. خوف صرف اس چیز کا ہے کہ امریکہ ول نیور بی دا سیم. یہ جو نفرت کی سیاست انہوں نے شروع کر دی ہے یہ نفرت کی سیاست نہ صرف ہمیں ہانٹ کرے گی ایز اے مسلم بلکہ وہ امریکہ کو بھی ہانٹ کرے گی. اور یہ جو ملک جو جس کی جو بیسک اساس تھی وہ پیار محبت اور جو ٹائٹل 7 آف دی یو ایس لا جس میں ڈسکریمنیشن کو سختی سے منع کیا گیا ہے جس پہ پابندی ہے جو غیر قانونی ہے, یہ انہوں نے اس ٹائٹل 7 کی نہ صرف خلاف ورزی کی ہے بلکہ انہوں نے پوری قوم کو یہ راہ دکھا دی ہے کہ آپ جس وقت چاہیں جس کے خلاف چاہیں جو مرضی ہرجہ سرائی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا لاس اس ملک کا یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ نفرت کا بیج بو دیا ہے, یہ بیج ابھی بڑا ہوگا اور ابھی یہ طلعت رشید صاحب بھی اگلے 5-7-10 سال میں دیکھیں گے. پریزیڈنٹ جو بھی آئے گا اسے فرق نہیں پڑے گا, یہ نفرت کا بیج ایک بڑا تناور درخت بنے گا. اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے طلعت رشید صاحب کو بھی اور مجھے بھی اور شکیل سید صاحب کو بھی اور ہمیں پوری مسلمان قوم جو یہاں پہ امریکہ میں ہیں, وی ول ہیو ٹو ورک ریئلی ہارڈ, وی ول ہیو ٹو ایکسپوز اوور سیلف ایز لا ابائڈنگ اینڈ لونگ یو ایس سٹیزنز تاکہ ہمارے خلاف یہ جو نفرت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑھائی ہے ایک آرڈنری امریکن کے دل میں, اس کو ہم پازیٹو طریقے سے چینج کر سکیں. پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کے اس کو ایک طرف رکھ کے ایز اے مسلم ہمیں اس امریکہ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا اور اپنے نیبرز کو بتانا ہوگا کہ وی آر ایز امریکن اینڈ ایز لائل ٹو امریکہ ایز دے آر.
بہت شکریہ ملک ندیم صاحب. یہ تھے سامعین ڈیموکریٹک پارٹی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اور ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے ایک سینئر رہنما. جی نام میں اس وقت آپ کا بھول گئی, طلعت رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے. और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया था केयर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शकील सैयद साहब ने. तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया. शहनाज नफीस को नेक्स्ट शो तक इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.